بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ریڈیو تہران ہے، اسلامی گنراجیہ ایران کی آواز۔
ریڈیو تہران کے آدرنیہ شروتا زہرا زیدی اور ساتھیوں کا سلام سویکار کیجیے۔ شروتاؤں، آج کے کاریکرم کا شبھ آرمبھ پویتر قرآن کے سورہ حجرات کی چھٹی اور ساتویں آیتوں کی تلاوت اور انواد سے کیا جا رہا ہے۔ قاری ہیں شری عبد الباسط۔
بسم الله الرحمن الرحيم۔
يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا
اللہ کے نام سے جو اتیان کرپاشیل اور دیاوان ہے۔ ہے ایمان والو، یدی کوئی ادھرمی کوئی خبر لے کر آئے تو چھان بین کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ تم کسی گٹ کو انجانے میں کوئی ہانی پہنچا بیٹھو اور پھر تمہیں اپنے کیے پر پشچاتاپ ہو۔ اور جان لو کہ تمہارے بیچ ایشور کے پیغمبر موجود ہیں۔ بہت سی باتیں ایسی ہیں کہ یدی پیغمبر ان میں تمہارا کہا مان لیا کریں तो उल्टे तुम ही कठिनाई में पड़ जाओ, परंतु ईश्वर ने तुम्हें ईमान का प्रेम दिया है और उसे तुम्हारे हृदयों में सजा दिया है, और कुफ्र उल्लंघन और अवज्ञा को तुम्हारे लिए अप्रिय बना दिया है, और ऐसे ही लोग ईश्वर के अनुग्रह और उपकार से सही मार्ग पर हैं।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। श्रोताओं, हमारा ये प्रसारण आप शॉर्टवेव में 25 मीटर बैंड बराबर 11,860 किलोहर्ट्ज पर सुन रहे हैं। आज शुक्रवार है, महर की पहली, सफर की 26 और सितंबर की 23 तारीख। इस सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम इस प्रकार हैं। सबसे पहले आप सुनेंगे विश्व समाचार, उसके बाद राजनीतिक चर्चा, उसके बाद पवित्र प्रतिरक्षा सप्ताह के अवसर पर हम आपको विशेष कार्यक्रम सुनवाएंगे, और अंत में आप सुनेंगे पत्र संसार। तो ताज़ा और विस्तृत खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट देखते रहिए। वेबसाइट का पता है parstoday.com/hi। अब आप सैयद मीसम से विश्व समाचार सुनिए। सबसे पहले आज के मुख्य समाचारों का सारांश। तेहरान समेत ईरान के कई शहरों में विरोध के बहाने उपद्रवियों ने तांडव किया है। जुमे की नमाज के बाद हिंसा के खिलाफ पूरे ईरान में शांति रैलियों का आयोजन किया गया है। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी इससे अमेरिका अमेरिका से स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। ब्रिटिश सांसद ने चेतावनी दी है कि हिंदू मुस्लिम हिंसा देश के दूसरे हिस्सों में फैल सकती है। अब आप विस्तार से विश्व समाचार सुनिए। महसा अमीनी की मौत के बहाने दंगाइयों और उपद्रवियों ने कल रात भी ईरान की राजधानी तेहरान समेत कई शहरों में सार्वजनिक और निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया और सुरक्षा बलों को निशाना बनाया। दंगाइयों ने सहायता पहुंचाने वाले वाहनों, एम्बुलेंस और दमकल गाड़ियों को भी नहीं बख्शा। उपद्रवियों के हमलों में अब तक कई चिकित्सा टेक्नीशियन और बचावकर्मी घायल हुए हैं, जिन्हें विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। इसके साथ ही 61 एम्बुलेंसों को भी नष्ट कर दिया गया है। तेहरान के मेयर का कहना है कि पिछले कुछ दिनों के दौरान 23 दमकल गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया, जबकि एक दमकल वाहन को आग के हवाले कर दिया गया। तेहरान के मेयर जाकानी ने बताया कि उपद्रवियों ने विरोध प्रदर्शनों के बहाने 43 बसों और 56 बस स्टेशनों को भी नष्ट कर दिया। उपद्रवियों ने शांति बहाल करने का प्रयास करने वाले सुरक्षाकर्मियों पर भी रहम नहीं किया। तेहरान में उपद्रवियों ने एक पुलिसकर्मी पर गाड़ी चढ़ा दी, तो वहीं एक अन्य पुलिसकर्मी को अमानवीय रूप से आग के हवाले कर दिया गया। इस बीच कुछ दंगाइयों द्वारा माहौल खराब करने और दुश्मन मीडिया द्वारा आम लोगों को भड़काने के प्रयासों के बावजूद शुक्रवार को देश भर में शांति रही। शुक्रवार को ईरान की राजधानी तेहरान समेत विभिन्न शहरों और कस्बों में नमाज जुमा के बाद देश में जारी हिंसा और अशांति के खिलाफ विशाल रैलियों का आयोजन किया गया। गौरतलब है कि पिछले कई दिनों से महसा अमीनी की मौत के बहाने तेहरान और दूसरे कई शहरों में दंगाइयों ने हिंसा का तांडव मचा रखा था और वे सार्वजनिक और निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचा रहे थे। ईरान के इस्लामी प्रचार संगठन की समन्वय परिषद के अनुसार शुक्रवार को निकाली गई शांतिपूर्ण रैलियों में कुछ भाड़े के पिछुओं द्वारा विभाजनकारी कदमों और पवित्र कुरान और पैगम्बर मोहम्मद का अनादर करने वालों की निंदा की गई। गौरतलब है कि 22 वर्षीय अमीनी की मौत के बहाने कुछ भाड़े के पिट्ठू विदेशी शक्तियों के इशारे पर देश भर में अब तक कई मस्जिदों को आग के हवाले कर चुके हैं और सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। दंगाइयों द्वारा सुरक्षा बलों और हिजाब पहनने वाली महिलाओं को भी निशाना बनाया जा रहा है। पुलिस द्वारा अमीनी की मौत के बारे में स्पष्टीकरण जारी करने और सरकार द्वारा जांच का आदेश देने के बावजूद दंगाई इस घटना को देश में हिंसा और अशांति फैलाने के लिए बहाना बना रहे हैं। गुरुवार को ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बयान जारी करके कहा था कि अब तक 60 से भी ज्यादा एम्बुलेंसों में तोड़फोड़ की गई है या उन्हें नष्ट कर दिया गया है। ईरान के राष्ट्रपति सैयद इब्राहिम रईसी आज न्यूयॉर्क से तेहरान के लिए रवाना हो गए। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के वार्षिक अधिवेशन में भाग लेने के पश्चात ईरान के राष्ट्रपति शुक्रवार को अमेरिका से स्वदेश के लिए रवाना हुए। राष्ट्र संघ की महासभा के 77वें अधिवेशन में अमेरिका में अपने प्रवास के दौरान राष्ट्रपति रईसी ने संयुक्त राष्ट्र संघ में अपने भाषण के अतिरिक्त कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में भाग लिया। उन्होंने यूनेस्को की ओर से शिक्षा एवं प्रशिक्षण के बारे में आयोजित सम्मेलन में भी भाग लिया। इसी दौरान उन्होंने विभिन्न धर्म के धर्मगुरुओं से भी मुलाकातें की। ईरान के राष्ट्रपति ने अमेरिका के विशेषज्ञों और वहां के वरिष्ठ मीडिया प्रबंधकों से भी मुलाकात की। अमेरिका में रहने वाले ईरानियों के साथ राष्ट्रपति ने अलग से विशेष बैठक की। ब्रिटेन के सांसद क्लाउजिया वेब ने चेतावनी दी है कि इंग्लैंड के लेस्टर में हुई हिंदू मुस्लिम हिंसा देश के दूसरे हिस्सों में भी फैल सकती है। क्लाउडिया ने कहा कि चरमपंथी और दक्षिणपंथी विचारधाराओं तथा सोशल मीडिया के माध्यम से गलत सूचना फैलाई जा रही है। उन्होंने कहा कि इन पर नकेल कसने की जरूरत है। लेस्टर के सांसद वेब ने कहा कि सरकार को हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नफरती और भड़काऊ बयानों को फैलाने से रोका जाना चाहिए। इस्लामाबाद ने पाकिस्तान के किसी भी सरकारी प्रतिनिधिमंडल की इसराइल की यात्रा की खबरों का खंडन किया है। गौरतलब है कि मीडिया में ऐसी खबरें आ रही थीं कि एक पूर्व मंत्री समेत पाकिस्तान के अधिकारियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने बैतुल मुकद्दस में इसराइली अधिकारियों के साथ मुलाकात की है। एक्सप्रेस न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक शुक्रवार को पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता आसिम इफ्तिखार ने इस खबर को निराधार बताते हुए कहा, फिलिस्तीन के बारे में इस्लामाबाद का रुख स्पष्ट है और पाकिस्तान ने हमेशा ही फिलिस्तीनियों को उनके भविष्य के निर्धारण का अधिकार देने की पैरवी की है। इफ्तिखार का कहना था कि जिस मुलाकात के बारे में बात की जा रही है वो एक ऐसे गैर सरकारी प्रतिनिधि मंडल के बारे में है जो विदेश में है और पाकिस्तान स्थित नहीं है। पाकिस्तान ने अभी तक ज़ायोनी शासन को मान्यता प्रदान नहीं की है और हमेशा ही उसने पीड़ित फिलिस्तीनी जनता का समर्थन किया है। फिलिस्तीन की शहीद पत्रकार शीरीन अबू आकिला को विशेष अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। विदेश समाचार पत्रों और पत्रकारों के अंतर्राष्ट्रीय संघ ने शहीद पत्रकार शीरीन अबू आकिला को मरणोपरांत विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया। अल जजीरा टीवी चैनल के अनुसार उनको ये पुरस्कार स्पेन की राजधानी मैड्रिड में दिया गया। इस पुरस्कार को स्पेन में मौजूद फिलिस्तीनी राजदूत हसनी अब्दुल वाहिद ने स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि शीरीन अबू आकिला की हत्या के मामले को सरलता से अनदेखा नहीं किया जा सकता। सीरिया के समुद्री तट पर एक लेबनानी नाव डूब गई है जिस पर सवार 150 गैर कानूनी अप्रवासियों में से करीब 53 लोगों के मरने की पुष्टि हो चुकी है। गुरुवार को सीरिया के समुद्री तट पर यह घटना घटी जिसमें 53 लोगों की जान चली गई। शुक्रवार को राय अल योम की रिपोर्ट के मुताबिक सीरिया के तरतूस प्रांत में एक चिकित्सा सूत्र ने बताया कि सीरिया के समुद्री क्षेत्र में लेबनानी नाव के डूबने से 53 लोग हताहत हो गए। सीरियाई सूत्रों का कहना था कि नाव पर सवार लोगों में से अब तक 17 की जान बचाई जा चुकी है, जिसमें से 16 को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक बचाव दल ने अब तक अल बुसैरा के इलाके से महिलाओं और बच्चों के शवों समेत 17 शवों को खोज निकाला है। सूत्रों का कहना है कि नाव पर लेबनानी, सीरियाई और फिलिस्तीनी नागरिक सवार थे, जो किसी यूरोपीय देश में शरण लेने के इरादे से इस समुद्री यात्रा पर निकले थे। रूस का कहना है कि यूक्रेन की परमाणु तबाही को रोकने के लिए यूरोपीय को आगे आना चाहिए। रूस के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने कहा है कि अगर उनको परमाणु त्रासदी की चिंता है तो फिर वो यूक्रेन को वापस सही रास्ते पर लाने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। मारिया जखारोवा कहती हैं कि ज़ापोरिज़्या परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर यूक्रेन द्वारा हमले को रोकने के लिए अमरीका के साथ मिलकर यूरोप को भी प्रयास करने चाहिए। रूस में 10,000 लोगों ने यूक्रेन के विरुद्ध स्वेच्छा से लड़ने की घोषणा की है। रूस की सेना ने गुरुवार को बताया कि सेना के रिजर्व बलों की लामबंदी के पहले ही दिन 10,000 रूसियों ने यूक्रेन के विरुद्ध युद्ध लड़ने की घोषणा की है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एक आदेश जारी करके कह चुके हैं कि 21 सितंबर से सेना में स्वेच्छा से भर्ती का अभियान आरंभ किया जाएगा। इसमें वे लोग भी भाग ले सकेंगे जिनके पास सैन्य अनुभव होगा। रूसी रक्षा मंत्री का कहना है कि 3,00,000 लोगों को बुलाया जाएगा। इसी के साथ रेडियो तेहरान से समाचार समाप्त हुए।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज।
राजनीतिक चर्चा।
दोस्तों, मैं हूं रविश जैदी और आपका स्वागत है राजनीतिक चर्चा के दैनिक कार्यक्रम में। आज के कार्यक्रम में हम सबसे पहले बात करेंगे राष्ट्रपति रईसी की 4 दिवसीय न्यूयॉर्क की कामयाब यात्रा के बारे में,
सरदवीरों व सुतुनविसों इधर रसानोय अमेरिकी,
और फिर बात करेंगे अमेरिका के नेतृत्व में 40 देशों की सेना की मौजूदगी में अफगानिस्तान के दुनिया में सबसे अशांत बनने के बारे में
अमेरिका,
और अंत में चलेंगे भारत, जहां कश्मीर के एलजी इस इलाके को सिनेमा घरों के जरिए अलगाववाद और आतंकवाद से मुक्त कराने का दावा कर रहे हैं।
देश के विकास में भी अत्यंत महत्व।
तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रपति रईसी की न्यूयॉर्क यात्रा के अंतिम दिन हुई कई महत्वपूर्ण मुलाकातों और बैठकों के बारे में। इस संबंध में एक रिपोर्ट पेश कर रहे हैं न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र संघ कार्यालय से IRIB के संवाददाता अली रजबी, हमारे साथी सैयद मीसम की आवाज में।
राष्ट्रपति रईसी की न्यूयॉर्क यात्रा के अंतिम दिन कई महत्वपूर्ण मुलाकातें और बैठकें हुई। इसमें कई अमेरिकी संचार माध्यमों जैसे CNN, CBS, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉल स्ट्रीट जर्नल और कई अन्य टीवी चैनलों और समाचार पत्रों के संपादकों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक विशेष मीटिंग की। राष्ट्रपति रईसी ने इस बैठक में क्षेत्र और अंतर्राष्ट्रीय स्थिति और परमाणु समझौते को लेकर चल रही वार्ता के बारे में, ईरान के स्टैंड के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस बैठक के बारे में स्वयं राष्ट्रपति रईसी बताते हैं। ईरानी राष्ट्रपति का कहना है कि हमने अमेरिकी मीडिया के अधिकारियों के साथ बैठक में कहा कि आप अपने देश के अधिकारियों से कहें कि अमेरिका ने दुनिया के जिस भी देश के मुद्दे में हस्तक्षेप किया है, आज तक न केवल उस मुद्दे एवं समस्या का हल नहीं निकल सका है, बल्कि समस्याएं और संकट अधिक पैदा हुए हैं। यह वास्तविकता है। अगर आप अफगानिस्तान को ही देखें कि वहां 20 वर्षों तक अमेरिका था, वहां उसकी उपस्थिति से न ये कि कोई समस्या हल नहीं हुई, बल्कि अशांति, नरसंहार और युद्ध में वृद्धि हुई है। अमेरिका के रहते अफगानिस्तान में 35,000 बच्चे अपाहिज हुए हैं, लाखों लोग बेघर हुए हैं। ये है अमेरिका और नाटो की अफगानिस्तान में मौजूदगी का नतीजा। राष्ट्रपति रईसी ने कहा कि क्षेत्रीय राष्ट्रों जैसे यमन, सीरिया, अवैध अधिकृत फिलिस्तीन और अफगानिस्तान के लोगों को स्वयं अपने भविष्य के बारे में फैसला लेने देना चाहिए। इस तरह समस्या का समाधान निकल सकता है। राष्ट्रपति रईसी ने इस बैठक में और अन्य मुलाकातों में भी परमाणु समझौते के भविष्य और ईरान इस समझौते को लेकर क्या सोचता है, इस बारे में बात की है। राष्ट्रपति का कहना है कि अगर अमेरिका चाहता है कि वो समझौता करे तो उन्हें अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करना चाहिए, क्योंकि उन्हें अभी तक अपने वादों पर अमल नहीं किया है। यूरोपीय देशों ने भी अपने वादों पर अमल नहीं किया है। बस अंतर यह है कि अमेरिका ने समझौते से निकलने की घोषणा की थी, लेकिन यूरोपीय देशों ने ऐलान नहीं किया, जबकि दोनों ने अपने वादों पर अमल नहीं किया। मेरा साफ कहना है कि अगर ये लोग अपनी प्रतिबद्धताओं पर अमल करें और प्रतिबंधों को समाप्त करते हैं और समझौते के प्रति कटिबद्ध रहते हैं, तो बिल्कुल एक अच्छे समझौते की संभावना पाई जाती है। बता दें कि राष्ट्रपति रईसी ने न्यूयॉर्क में अपने प्रवास के दौरान संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस, फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रॉन, यूरोपीय संघ के प्रमुख और इस संघ के कुछ सदस्यों के अतिरिक्त स्विट्जरलैंड, बोलिविया, फिनलैंड, सर्बिया तथा नाइजीरिया के राष्ट्रपतियों से मुलाकात की। सैयद इब्राहिम रईसी ने इराक, पाकिस्तान, जापान और आर्मेनिया के प्रधानमंत्रियों से भी अलग अलग मुलाकातें की। इस्लामी गणतंत्र ईरान के राष्ट्रपति सैयद इब्राहिम रईसी ने संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के वार्षिक अधिवेशन के संबोधन के दौरान शहीद जनरल कासिम सुलेमानी के फोटो को दिखाते हुए कहा कि दुनिया के दूसरे कोने में बसने वाली एक सरकार ने क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति को बदलने की योजना बनाई थी। शहीद जनरल कासिम सुलेमानी की कमान में ईरानी जवानों ने उस योजना को पूरी तरह से नाकाम बना दिया। राष्ट्रपति रईसी अपनी 4 दिवसीय न्यूयॉर्क की कामयाब यात्रा के बाद तेहरान वापस आ रहे हैं। न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र संघ कार्यालय से IRIB के लिए अली रजबी की रिपोर्ट।
और अब चर्चा करते हैं अशांत अफगानिस्तान के बारे में। अफगान जनता का मानना है कि अमेरिका ने अफगानिस्तान में आतंकवाद के खिलाफ युद्ध के बहाने आतंकवाद को ज्यादा बढ़ावा दिया है। इस बारे में एक रिपोर्ट पेश कर रहे हैं काबुल से IRIB के संवाददाता बहनाम यजदानी, हमारे साथ ही कायम रिजवी की आवाज में।
अफगानिस्तान की राजधानी काबुल एक बार फिर भीषण धमाके से दहल उठी। इस बार काबुल में स्थित एक रेस्टोरेंट के कर्मचारी निशाना बनाए गए। इस धमाके में 16 लोगों के हताहत और घायल होने की सूचना है। पिछले कुछ महीनों में अफगानिस्तान में स्कूलों, मस्जिदों, इमामबाड़ों, राजनयिक केंद्रों और यात्री गाड़ियों को आत्मघाती हमलों तथा विस्फोटक पदार्थों से लैस गाड़ियों के जरिए निशाना बनाया गया। एक अफगान नागरिक का कहना है कि कभी हमारे स्कूलों और कभी मस्जिदों को निशाना बनाया जा रहा है। अफगानिस्तान की हर दिन खराब होती स्थिति और सुरक्षा को लेकर बढ़ते डर के बारे में काबुल के रहने वाले एक नागरिक का कहना है, जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो उसके बाद हमें ये मालूम नहीं होता कि अब हम घर जिंदा वापस जा पाएंगे या नहीं, अपने बच्चों को हम फिर से देख पाएंगे या नहीं। इधर कई वर्षों से अफगानिस्तान हर दिन किसी न किसी धमाके का गवाह रहा है। دلچسپ چیز یہ ہے کہ امریکہ کے نیتتو میں 40 دیشوں کی سینا کی موجودگی کے باوجود افغانستان میں اتنے زیادہ دھماکے ہوئے کہ وہ دنیا کا سب سے اشانت دیش بن گیا۔ ایک افغان یوک کا کہنا ہے کہ امریکہ نے یہاں آتنکواد سے مقابلے کے نام پر آتنکواد کو اور ادھک بڑھاوا دیا ہے۔ اب جبکہ حملہور اس دیش کو چھوڑ کر جا چکے ہیں، لیکن وہ جو آتنکواد کا بیج بو کر گئے ہیں، اب وہ آتنکوادی گٹ حملہوروں کے ادیش کو پورا کر رہے ہیں۔ آئے دن آتمگھاتی حملے اور بم دھماکے انہی حملہوروں کی سازش کی یوجنا کا حصہ ہیں۔ حالیہ دنوں میں افغانستان میں ہونے والے دھماکوں کی زیادہ تر ذمہ داری داعش نے ہی سویکار کی ہے۔ ایک انیہ افغان ناگرک کا کہنا ہے کہ اگر داعش یہ سب کر رہا ہے تو سوال یہ ہے کہ داعش کہاں سے اٹھ کر افغانستان میں آ گیا۔ ایک دوسرے افغان ناگرک کا کہنا ہے کہ جس سمے امریکہ افغانستان کے عام لوگوں کو سرکشن دینے کے لیے دوسرے دیشوں میں استھانانترت کر رہا تھا، تبھی وہ داعش کے آتنکوادیوں کو ہمارے دیش میں پرویش بھی کروا رہا تھا۔ افغانستان کے لوگ اس بات کے ساکشی ہیں کہ اس دیش میں داعش کو لانے والا کوئی اور نہیں بلکہ سوئم امریکی ہی ہیں۔ اب جو چیز افغانستان میں صاف دکھائی دے رہی ہے وہ یہ ہے کہ حملہوروں نے پچھلے 2 دشکوں میں افغانستان میں نرسنہار، تباہی اور دھماکوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں چھوڑا، اور جب پوری طرح سے افغانستان کو برباد کر دیا تو وہ اس دیش کو چھوڑ کر چلے گئے۔ پچھلے 2 دشکوں میں افغانستان ایسی استھتی میں اتنا زیادہ اشانت ہوا ہے کہ جب اس دیش کی زمین اور ہوا دونوں پر امریکہ کا نینترن تھا، اب جبکہ امریکہ یہاں سے چلا گیا ہے تب بھی کابل کے آسمان پر امریکی ڈرون کے اڑنے کی آوازیں صاف سنائی دی جا سکتی ہیں۔ طالبان نے بھی افغانستان کی وایو سیما میں امریکی ڈرونوں کی اڑانوں پر آپتی جتائی ہے۔ کابل سے آئی آر آئی بی کے لیے بہنام یزدانی کی رپورٹ۔
اور اب رک کرتے ہیں بھارت کا۔ دشک بعد کشمیر میں سینما کی پھر واپسی کے بارے میں ایل جی منوج سنہا کا دعویٰ ہے کہ یہ آتنکواد اور الگاؤواد کو ختم کرے گا۔ وہیں پہاڑ پر رہنے والوں نے مودی سرکار کے خلاف زبردست ویروھ پردرشن کیا ہے۔ اس بارے میں وستار سے جانکاری دے رہے ہیں شری نگر سے ہمارے سمباد داتا سپت محمد حسن۔
جموں کشمیر یو ٹی کے ایل جی منوج سنہا نے کہا ہے کہ جموں کشمیر میں ان کے پرشاسن کال میں آتنکواد اور الگاؤواد کا سماپت ہوگا، ایسا لوگوں کے سمرتھن سے سمبھو ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب الگاؤواد اور آتنکواد آخری ہچکیاں کھا رہا ہے، پرنتو میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ جموں کشمیر کے جنتا نے جس طرح سے ہمارا سہیوگ کیا ہے میں اس کا سواگت کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ہر ڈسٹرکٹ میں انٹرٹینمنٹ کے لیے اب سینما کھولے جائیں گے اور لوگوں کو یہاں 3 دہائیوں کے بعد انٹرٹینمنٹ کے لیے بھی کچھ مل جائے گا۔ ایل جی نے کہا کہ میرا یہ ماننا ہے کہ جموں کشمیر کے لوگ شانتی کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور ہم شانتی کو سمبھو بنانے کے لیے ہر سمبھو پریاس کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سرکشا ایجنسیوں نے جہاں اس میں بڑا رول ادا کیا وہیں پر لوگوں کا سہیوگ بھی کافی اہم تھا۔ اس اوسر پر انہوں نے کہا،
دیش کے وکاس میں بھی اتینت مہتوپورن یوگدان کا نروہن کیا ہے۔ سنیما نے ویشوک پریورتنوں سے بھی لوگوں کو جاگروک کر کے سماج کو موٹیویٹ کیا ہے، سنسکرتی کو سمردھ کرنے میں ایک مہتوپورن بھومکا نبھائی ہے۔ لیکن کشمیر ڈویژن اس ویوستھا سے 3 دشکوں تک دور تھا، ونچت تھا۔
اس بیچ پہاڑی ورگ سے وابستہ لوگوں نے آج جموں کشمیر کے پریس کالونی میں آ کر زبردست پردرشن کیے۔ پردرشنکاریوں کا کہنا تھا کہ شیڈول ٹرائب اسٹیٹس اگر کسی انیہ ذات کو دیا جائے گا تو اس کا ویروھ کریں گے۔ اس اوسر پر پردرشنکاریوں نے پترکاروں کے ساتھ وارتا کرتے ہوئے کہا،
آج کا جو پروٹیسٹ ہے یہ کو 6 مہینے یا 1 سال سے ایک ریومر چل رہا ہے کہ ایس ٹی اسٹیٹس سے پہاڑیوں کو پہاڑی اسٹیٹس دیا جا رہا ہے۔ ہم آج اسوج کے مہینے میں بہت کم تعداد میں لوگ نکلے ہیں، ہر گھر تک ہر فرد کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ یہ سینٹر گورنمنٹ زیادتی کر رہی ہے۔ آج اس میڈیا کی مادھیم سے میں سینٹر گورنمنٹ کو چیلنج کرتا ہوں کہ اگر جو ہمارا 10% ہے اس کے ساتھ چھیڑ خانی کی گی تو آپ یہاں کے کچھ لیڈر سینٹر میں جا کر کہتے ہیں کہ ہم 50 پارک کرائیں گے، 50 سیٹیں جتائیں گے۔ 50 سیٹیں کیا کہ ہندوستان میں 25 کروڑ گجر کھڑا ہو جائے گا۔
بالکل۔
ادھر جموں کشمیر میں ہنسک گھٹناؤں کا کرم بھی جاری ہے جس میں ایک الگاوادی چھاپہ مار کے ہتاہت ہونے کی سوچنا ہے۔ سپت محمد حسن، ریڈیو تہران، سری نگر۔
دوستوں، راجنیتک چرچا کا یہ دینک کاریکرم اب یہیں سماپت ہوتا ہے۔
प्रस्तुत है एक विशेष कार्यक्रम।
दोस्तों, पवित्र प्रतिरक्षा सप्ताह के उपलक्ष्य में हम एक विशेष कार्यक्रम के साथ आपकी सेवा में हाजिर हैं। रविश जैदी और स्वाति का सलाम स्वीकार कीजिए। आज के कार्यक्रम में हम ईरान की इतिहास रचने वाली महिलाओं के बारे में चर्चा करेंगे। आशा करते हैं कि आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आएगा। हमारे साथ बने रहें।
सितंबर 1980 में ईरान पर थोपे गए 8 वर्षीय युद्ध की शुरुआत के साथ महिलाओं ने देश की आबादी के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में अवर्णनीय साहस और बहादुरी के साथ युद्ध के मोर्चों पर ऐसे ऐसे कार्यों को अंजाम दिया है कि जिसने इतिहास रच दिया है। ईरान की सीमावर्ती शहर खुर्रम शहर, सुसंगर्द, अहवास, मेहरान समेत अन्य सभी इलाकों में पवित्र प्रतिरक्षा के समय ईरान की बहादुर महिलाओं ने अपने साहस और हिम्मत का ऐसा परिचय दिया कि आज देश के इतिहास में उन सभी बहादुर महिलाओं के नाम सुनहरे शब्दों में दर्ज है। यह अज्ञात महिला सैनिक थी जिन्होंने युद्ध के मोर्चे पर रसद और कुछ अन्य कर्तव्यों का भारी बोझ अपने कंधे पर उठाया हुआ था। सीमावर्ती क्षेत्रों पर दुश्मन के अचानक हमले और शहरों पर हवाई बमबारी के कारण महिलाओं को सीधे युद्ध क्षेत्रों में उपस्थित होना पड़ा। सामाजिक गतिविधियों में महिलाओं के आह्वान और आंदोलन का जन्म इस्लाम की प्रारंभिक दिनों की महिलाओं, विशेष रूप से पैगंबर इस्लाम की प्राण प्रिय बेटी हजरत फातिमा जहरा और हजरत जैनब जैसी आदर्श महिलाओं से होता है, जिन्होंने इस्लामी विचारधारा और समाज की जरूरतों के आधार पर सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लिया। आज के कार्यक्रम में भी हम ऐसी सभी महिलाओं के जीवन पर नजर डालेंगे कि जिन्होंने पवित्र प्रतिरक्षा के समय दमदार तरीके से अपनी भूमिका निभाई है।
प्राप्त आंकड़ों के अनुसार ईरान पर थोपे गए युद्ध में शहीद होने वाले जियालों में 6,428 महिला शहीद भी शामिल हैं। शहीद होने वाली महिलाओं में ज्यादातर ऐसी महिलाएं हैं जो शहरों पर होने वाली बमबारी और रॉकेटों के हमलों में शहीद हुई हैं। लेकिन इन शहीदों में 500 महिला ऐसी भी थीं कि जिन्होंने युद्ध के मोर्चे पर अपनी जान देश पर कुर्बान की है। वहीं 6,428 शहीद होने वाली महिलाओं में अधिकतर अविवाहित और युवा थीं। इनमें 2,500 महिलाओं की आयु केवल 10 से 30 साल की थी। इसी तरह यह भी मुनासिब है कि आप जाने के पवित्र प्रतिरक्षा के 8 वर्षों के दौरान 22,800 सहायता कर्मी, 2,276 महिला डॉक्टर भी युद्ध के मोर्चे पर गई थीं। युद्ध में घायल होने वाले योद्धाओं की संस्था द्वारा लिंग के आधार पर वर्ष 2002 में पेश किए गए आंकड़ों के अनुसार युद्ध में घायल होने वाली महिला योद्धा की कुल संख्या 5,735 है, जिनमें से 3,075 महिला योद्धा 25% से अधिक घायल हैं। इसके अलावा हालांकि ईरान के खिलाफ इराक द्वारा थोपे गए 8 वर्षीय युद्ध में बंदियों की सही संख्या के बारे में कोई स्पष्ट आंकड़े अभी तक प्रकाशित नहीं हुए हैं, लेकिन कुछ सूत्रों का कहना है कि 8 साल के युद्ध के दौरान 171 महिलाओं को इराकी सैनिकों द्वारा बंदी बनाया गया था।
ईरान पर 8 वर्षों तक थोपे गए युद्ध के दौरान हालांकि देश की आय का एक बड़ा हिस्सा युद्ध के मोर्चों को संभालने वाली सेना और स्वयंसेवियों पर खर्च किया गया था। युद्ध के मैदान की विशालता, संघर्ष की लंबी अवधि, आर्थिक नाकाबंदी और प्रतिकूल घरेलू आर्थिक स्थिति के कारण सरकार युद्ध पर होने वाले भारी भरकम खर्चे को उठाने में असमर्थ होती जा रही थी। इसीलिए ऐसी स्थिति में स्वयंसेवियों का ज्यादा से ज्यादा संख्या में सामने आना जरूरी था। ये वही समय था कि देश की बहादुर महिलाएं सामने आई और युद्ध सहायता मुख्यालयों में सक्रिय रूप से भाग लेकर इन महिलाओं ने इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महिलाओं ने न केवल खाइयां खोदकर और सैनिकों के लिए भोजन तैयार करके और गोला बारूद की रक्षा करके पुरुषों की मदद की, बल्कि प्रारंभिक स्तर पर प्राप्त सैन्य प्रशिक्षण के साथ दुश्मनों के खिलाफ अग्रिम पंक्ति में भी लड़ाई भी लड़ी। युद्ध के मोर्चे पर मौजूद जियालों की सभी प्रकार की जरूरतों को पूरा करने के लिए मस्जिदों और स्कूलों में सार्वजनिक सहायता केंद्र बनाया गया था, जहां महिलाओं ने सबसे अहम भूमिका निभाई। इन सहायता केंद्रों पर जनता से बड़ी संख्या में मिलने वाली मदद के सामानों की छटनी, उपकरणों की मरम्मत करना, उपकरणों का नवीनीकरण करना और भोजन, कपड़े और गर्म कपड़े उपलब्ध कराना, लगभग सभी जिम्मेदारी महिलाओं ने संभाल रखी थी।
श्रीमती इस्मत अहमदियान दो शहीदों और एक योद्धा की मां हैं। उन्होंने कई वर्षों तक वो एक वैन चालक के रूप में युद्ध के मोर्चे पर गईं और अहवाज में पवित्र रक्षा के 8 वर्षों के दौरान योद्धाओं का समर्थन किया। कपड़े धोने से लेकर जियालों के लिए नाश्ता तैयार करने तक ये केवल उस काम का हिस्सा है जो ईरान की साहसी और संघर्षशील महिलाओं ने उन वर्षों में अंजाम दिया था। वहीं निर्माण के क्षेत्र में प्रवेश ने इस्मत अहमदियान को एक उद्यमी बना दिया। इस बारे में वो कहती हैं कि युद्ध एक सबसे घटिया और खराब घटना है, लेकिन युद्ध का मोर्चा और उसमें शामिल लोग उनके लिए सबसे प्यारे थे और देश की रक्षा एक पवित्र कार्य है। शहीद नवाब सफवी की पोती फातिमा नवाब सफवी उन बहादुर महिलाओं में से एक थीं जो इस्लामी गणतंत्र ईरान के खिलाफ इराक के बासी शासन द्वारा थोपे गए युद्ध के दौरान एक मिशन के लिए बहमन शीर इलाके गई थीं। उन्होंने दुश्मन की स्थिति के बारे में प्रभावी और उपयोगी जानकारी देकर ऑपरेशन की सफलता में निर्णायक भूमिका निभाई थी। उनकी अंतिम मुलाकात में वो एक शहीद का शव ले जाते नजर आई थीं। ये पता चला कि वो एक सफल गोरिल्ला ऑपरेशन से लौट रही थीं।
संगत की रहने वाली बहादुर महिला मजिद नगरावी एक ऐसी महिला है कि जिन्होंने 17 नवंबर 1980 में सुसंगत की आजादी के लिए घेराबंदी को तोड़ने के लिए हुए ऑपरेशन में 6 दुश्मन सैनिकों और अधिकारियों को निहत्ता करने और उन्हें गिरफ्तार कराने में अहम भूमिका निभाई है। इस बारे में वे कहती हैं कि जब हमीदिया इलाके में इराकी सेना को करारी हार मिली तो दुश्मन सैनिकों ने बौखलाकर निहत्ते आम लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चला दी और भागने की कोशिश की, लेकिन उन्हें सीमा का रास्ता नहीं पता था। इस बीच जब 6 हमलावर हमारे घर के पास पहुंचे तो मैंने उनसे कहा कि यदि आप आगे जाते हैं तो आप लोगों को IRGC के जवान अपने घेरे में ले लेंगे और आप सब मारे जाएंगे, इसलिए आप लोग जल्दी मेरे घर में आ जाएं और ड्राइंग रूम में बैठ जाएं और अपनी बंदूकें हमें दे दें ताकि मैं उन्हें छिपा दूं। उन सभी 6 हमलावरों ने मेरी बात मानते हुए वैसा ही किया जैसा मैंने उनसे कहा। जब मैंने देखा कि अब उनके पास हथियार नहीं है तब मैंने कमरे को बाहर से बंद कर दिया और लोगों को आवाज लगाई। लोग एकत्रित हुए और उन्हीं से लिए गए हथियारों के बल पर उनको मस्जिदों की ओर ले गए।
इस बात को पूरे दावे के साथ कहा जा सकता है कि 8 वर्षीय थोपे गए युद्ध के दौरान ईरान की महिलाओं द्वारा जिस साहस और बहादुरी का प्रदर्शन किया गया है वो किसी भी समय और दुनिया के किसी भी क्षेत्र में अभूतपूर्व है। इस्लामी क्रांति के सुप्रीम लीडर के अनुसार अगर ईरानी महिलाओं ने अपनी बहादुरी का परिचय नहीं दिया होता और युद्ध के महत्व को अपने घरों में न दिखाया होता तो पुरुषों को युद्ध में जाने की इच्छा और प्रेरणा न मिली होती और युद्ध के मोर्चे पर स्वयंसेवियों का इतनी भारी संख्या में उपस्थिति न देखने को मिलती। युद्ध के शुरुआती दिनों में डॉक्टर मासूम आबादी ने रेड क्रीसेंट के सदस्य और सिटी हाउस सिस्टम में गवर्नर के प्रतिनिधि के रूप में काम किया। एक मिशन के दौरान उन्हें 3 अन्य महिलाओं के साथ इराकी सुरक्षा बलों ने पकड़ लिया था। वो 40 महीने तक इराकी जेलों में कैद रहीं और 1982 में उन्हें जेल से रिहाई मिली थी। इस सिलसिले में उनका मानना है कि शरीर की कैद अपनी जान देने के समान नहीं है। वे लोग जो पूरी दृढ़ता के साथ अपने आत्मसम्मान और गरिमा की रक्षा करते हैं, वे जानते हैं कि असली बंदी वे हैं जो मानव आत्मा के बिना घृणित और तुच्छ शरीर का पोषण करने के लिए अपनी आत्मा को एक छोटी सी कीमत पर बेचते हैं।
इसी तरह एक अन्य ईरान की इतिहास रचने वाली महिला हैं, किताब दाकी कथावाचक जहरा हुसैनी। यह उन महिलाओं में से एक हैं जिन्होंने अपनी बहादुरी और मानसिक प्रतिरोध के साथ शहीदों को दफनाने में अहम भूमिका निभाई है। उस समय उनकी उम्र 17 वर्ष से अधिक नहीं थी। उन्होंने अपने शहीद पिता और भाई को अपने हाथों से दफनाया था। खुर्रम शहर की आजादी के दौरान वे घायल हो गई थी और उनकी रीढ़ की हड्डी में एक छर्रा लग गया था जो हमेशा उनकी पीठ में रहा और उनको हमेशा दर्द देता रहा। हालांकि उन्होंने हार नहीं मानी और लगातार युद्ध के मोर्चे और युद्ध पीड़ित लोगों की सेवा करने की कोशिश की।
युद्ध के बारे में ईरानियों और विदेशियों द्वारा लिखी गई कई पुस्तकों में से जहरा हुसैनी की किताब अद्वितीय है। उन्होंने जिस अंदाज में युद्ध का आंखों देखा हाल बयान किया है, उस तरह किसी भी लेखक ने बयान नहीं किया है। उनकी किताब में त्याग और आस्था के जुनून के ऐसे दृश्य हैं कि जिससे दिल कांप जाता है। ईरान की इतिहास रचने वाली बहादुर महिलाओं के बारे में इस्लामी क्रांति के संस्थापक स्वर्गीय इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मुझे इस महान समूह यानी महिलाओं पर गर्व है जिन्होंने रक्षा के क्षेत्र में अपनी मूल्यवान और बहादुर उपस्थिति के साथ इस्लामी मातृभूमि, पवित्र कुरान और क्रांति को जीत दिलाई और अब वे युद्ध के मोर्चे पर अग्रिम पंक्ति और मोर्चे के पीछे काम कर रही हैं और बलिदान के लिए तैयार हैं। तो दोस्तों, कार्यक्रम का समय अब यहीं समाप्त होता है। हमें अनुमति दें।
श्रोताओं, अब प्रस्तुत है अगला कार्यक्रम पत्र संसार।
पत्र संसार।
दोस्तों, कार्यक्रम पत्र संसार में आपका स्वागत है। अपने भैया रविश जैदी और दीदी
मरियम मेहरदादी का सलाम स्वीकार कीजिए। दोस्तों, हमें आशा है कि आप जहां कहीं भी होंगे सकुशल होंगे और अपना मन पसंद कार्यक्रम सुनने के लिए तैयार होंगे।
बिल्कुल दोस्तों, हम भी यही उम्मीद करते हैं कि आप जहां भी होंगे अच्छे होंगे, आप स्वस्थ होंगे और जो तमाम परेशानियां हैं उससे दूर होंगे।
जी, तो आज भी हम जैसा हमारा कार्यक्रम रहता है, ईमेल रहते हैं, कमेंट्स रहते हैं और किसी श्रोता के विचार होते हैं, तो शुरू कर रहे हैं डॉक्टर हेमंत कुमार के ईमेल से। गोराडी जिला भागलपुर बिहार से लिखते हैं कि नीतीश कुमार ने जब से महागठबंधन से हाथ मिलाया है तब से उनके सहयोगी और समर्थक उन्हें प्रधानमंत्री पद का उपयुक्त प्रत्याशी बताने में लगे हुए हैं। इसमें हर्ज नहीं, लेकिन मुश्किल यह है कि अन्य विपक्षी दल पीएम प्रत्याशी के रूप में उनका नाम आगे बढ़ाने में उत्साह नहीं दिखा रहे हैं। पिछले दिनों उनसे मुलाकात करने पटना गए तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने भी पीएम प्रत्याशी के तौर पर उनका नाम आगे करने में हिचक दिखाई। आश्चर्य नहीं कि इसके पीछे उनकी आकांक्षा हो कि वो स्वयं पीएम पद के दावेदार बने। वो एक अरसे से विपक्षी दलों को एकजुट करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। कुछ समय पहले तक ऐसी ही कोशिश ममता बनर्जी कर रही थी, इसके पहले ऐसी ही कोशिश शरद पवार और उनके कुछ अन्य नेता भी कर चुके हैं। कुछ विपक्षी नेता कांग्रेस को साथ लेकर एकजुट होना चाहते हैं तो कुछ उसके बगैर। कांग्रेस को साथ लिए बगैर विपक्षी दलों का मोर्चा तो बन सकता है, लेकिन वो बड़ी राजनीतिक ताकत नहीं बन सकता। कांग्रेस विपक्ष दलों को एकजुट करने की मुहिम में भी तभी शामिल हो सकती है जब शेष दल राहुल गांधी को पीएम पद के प्रत्याशी के तौर पर स्वीकार करें, लेकिन इसके आसार कम ही दिखाई देते हैं।
हेमंत जी, आपने जो बात कही है इसमें तो राजनीतिक बात है, इसमें हम बहुत ज्यादा टिप्पणी नहीं कर सकते, इसलिए कि हमारा ये कार्यक्रम जो है वह आपके पत्रों को पढ़ना है, आपकी बातों को पहुंचाना है और अपने दिल की बात आप तक पहुंचाना है और आपके दिल की बातों को हमें सुनना है। लेकिन इसमें यही एक छोटी सी टिप्पणी जो हमारी व्यक्तिगत टिप्पणी है वो ये है कि इसमें पहले ये कि अभी प्रधानमंत्री बनने यानी अभी ये सपना ही नहीं है, इस बात पर पहले ये सोचना चाहिए कि क्या हम प्रधानमंत्री कोई हमारी यानी विपक्ष सत्ता में आ भी सकता है कि नहीं आ सकता है। अब यही सबसे बड़ी समस्या है कि अभी विपक्ष के पास ना इतनी ताकत है, ना इतनी शक्ति है, ना इतना ज़्यादा उनके पास इतनी सीटें हैं संसद में, लेकिन उससे पहले कि अभी इतनी ताकत नहीं है उसके ऊपर लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया है कि कौन प्रधानमंत्री रहेगा कौन प्रधानमंत्री नहीं रहेगा। बहरहाल ये एक बहुत बड़ी समस्या है विपक्ष के पास। सबसे पहले तो मेरा जो कहना है वो ये है कि आपस में मिलकर एकजुट होकर पहले मुकाबला करना चाहिए और उसके बाद जब वो जीत जाए तब आपस में बैठकर इस बात को तय करना चाहिए कौन प्रधानमंत्री के लायक है और कौन इस लायक नहीं है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि हम अपने कार्यक्रम के इस भाग में चलते हैं, दीदी के पास जाते हैं और उनका पिटारा खोलने की कोशिश करते हैं, वो भी सांस्कृतिक पिटारा जो होता है। तो चलते हैं उन्हीं के पास और देखते हैं कि आज वो क्या लेकर आई हैं।
जी, आज हम अनिसो दोले का एक ऐतिहासिक महल देखने जा रहे हैं जो काजर की क्वीन थी। अनिसुद्दौले का ये महल काजार शासन काल से संबंधित है। ये इमारत तेहरान में स्थित है और इस स्मारक को 2003 में राष्ट्रीय विरासत स्थल के रूप में पंजीकृत किया गया था। ये घर या महल 140 साल पुराना है और काजार शासन के नासिरुद्दीन शाह की तीसरी आधिकारिक पत्नी फातिमा सुल्तान अनिसुद्दौले का है। उनका उपमान क्वीन ऑफ ईरान था। वो नासिरुद्दीन शाह की प्रसिद्ध और प्रभावशाली पत्नी थी। नसीरुद्दीन शाह की हत्या के बाद उनके जीवन के अंतिम महीनों में ये रानी का निवास स्थान रहा है और ये महल उन्हीं के नाम पर रखा गया था। अनिसुद्दौले नसीरुद्दीन शाह के दरबार में सबसे प्रिय और सबसे प्रभावशाली व्यक्ति थी। वो काजार राजा की अन्य पत्नियों से श्रेष्ठ थी और हम उसे ईरानी राजशाही की रानी के रूप में देख सकते हैं। नसीरुद्दीन शाह की हत्या के बाद अनिसुद्दौले इसी महल में रहती थी। पहलवी शासनकाल के दौरान और उसकी मृत्यु के बाद इस महल के काजार मालिक ने इसे शिक्षा मंत्रालय को बेच दिया और ये महल स्कूल में बदल गया। प्रसिद्ध ईरानी वैज्ञानिक प्रोफेसर महमूद हिसाबी इसी स्कूल में पढ़ते थे। नादर इस्फानी नाम के एक व्यक्ति ने 1951 में इस पर कब्जा कर लिया। 1970 के दशक में ये तेहरान का कसाई खाना बन गया। ये महल 721 वर्ग मीटर के क्षेत्र को कवर करता है। ये दो मंजिला इमारत है जिसमें काजार हवेली के वैभव के कुछ निशान हैं। 140 साल पहले बने इस महल में दो दरवाजे हैं। एक दरवाजा यार्ड के लिए खुलता है और दूसरा सीधे भवन की ओर खुलता है। यार्ड में बहुत पुराने पेड़ हैं। इमारत यार्ड के नीचे एक सीढ़ी है और आगे बरामदा है जिस पर ग्रीक स्तंभों की कलाकृति पाई जाती है। पहली मंजिल में दो कमरे, एक किचन, एक बाथरूम, एक ड्रेसिंग रूम, एक स्टोरेज रूम और एक शौचालय है। ایک سیڑھی پہلی منزل کو دوسری منزل سے جوڑتی ہے جہاں سے دو بڑے ہال اور ایک کچن ہے۔ یہاں پر بنائی گئی چمنیوں کی سجاوٹ بہت ہی خوبصورت ہے۔ اس بھون کی سب سے مہتوپورن وشیشتا اس کے برآمدے کا اگربھاگ ہے۔ اگربھاگ کے مدھیے کو ایک اردھا وتاکار محراب سے سجایا گیا ہے جو پلاسٹر الکرنوں سے سجایا گیا ہے۔
تو بہرحال شروتاؤں، آپ نے سنا دیدی نے جو ہے وہ آج پھر ہم لوگوں کو جو ہے ایک محل کی سیر کرا دی ہے، اور بھوکا رکھتے ہوئے، اس لیے کہ کافی ہفتوں سے جو ہے وہ ہم لوگوں کو گھما ہی رہی ہیں، کھلا پلا کچھ نہیں رہی ہیں۔ تو اس آشا کے ساتھ کہ اگلے کارکرم میں اگلے سپتاہ وہ ہمارے لیے کچھ کھانے پینے کی چیز لائیں گی تاکہ پھر سے ہم جو ہے وہ بلوان ہو سکے، شکتی ہمارے اندر آ جائے۔
اپنا جو یہ ہے آپ جو پیٹ کے لیے تڑپ رہے وہ بتا رہے شروتاؤں کو۔
بالکل بالکل، وہی شروتا بھی ہمارے بھوکے ہیں کافی، ان کا بھی پیٹ خالی ہو گیا گھوم گھوم کر۔ تو اس آشا کے ساتھ
اگلے بار دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔
بالکل بالکل، چلیں۔ دوستوں، اب ہم کارکرم کے اس حصے میں پہنچ چکے ہیں جہاں پر آپ ہماری جو خبریں ہوتی ہیں اس کے اوپر اپنے ایک بہترین وچار دیتے ہیں کمنٹس کے ذریعے۔ تو دیدی کے پاس چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ آج کس نے کن کن خبروں پر اپنے کمنٹس دیے ہیں۔
جی، امریکہ کے لیے روانہ ہو گئے رئیسی، کنتو کسی بھی امریکی ادھیکاری سے بھینٹ نہیں کریں گے۔ اس پر منوچر لکھتے ہیں، سنیکت راشٹر بھروسے مند نہیں ہے کیونکہ وہ اپنے دوارا کیے گئے اپرادھوں کے لیے اسرائیل یا سعودی عرب جیسے دیشوں کی کبھی بھی نندا یا آلوچنا نہیں کرتے ہیں۔ سنیکت راشٹر ہمیشہ پشچم اور اس کے سہیوگیوں کا پکش لیتا ہے اور یہ سوتنتر اور نشپکش فیصلہ نہیں دیتا ہے۔ آخرکار وہ امریکہ میں استھت ہیں، سمبھوتہ وہ امریکی سرکار سے ان کے آدیش لے رہے ہیں۔
بہت صحیح بات کہی ہے منوچیر جی آپ نے۔ اس کے ساتھ ہی خود راشٹرپتی رئیسی نے بھی کہا ہے کہ سنیکت راشٹر سنگھ کو جو ہے وہ مہا شکتیوں، یعنی جو کتھت مہا شکتیاں ہیں، ان کا سنگھ نہیں بننے دینا چاہیے، بلکہ یہ ایک ایسا سنگھ ہونا چاہیے جہاں سب کی بات ہو، اور خاص کر ان پر وشیش دھیان دیا جانا چاہیے جو آرتھک حساب سے جو ہے بہت کمزور ہیں، جو دیش جہاں پر بھکمری بہت زیادہ پھیل رہی ہے، جہاں پر ہنسا بہت زیادہ پھیل چکی ہے، ان دیشوں پر ان کو وشیش دھیان دینا چاہیے، اور اس سنگھ کا یہی کام بھی ہونا چاہیے۔
جی، اربعین مارچ کسی چمتکار سے کم نہیں نصر اللہ۔ اس پر محمد علی لکھتے ہیں، اسرائیلی ہتھیاروں کو کام پر رکھنے کے لیے نقدی کے سوٹکیس کا استعمال کرنا پسند کرتے ہیں۔ مدھیہ ایشیا میں حال ہی میں نقدی کے سوٹکیس دکھائی دے رہے ہیں۔ مسلم اور عیسائی سمودایوں کو سترک رہنا چاہیے اور کسی سے بھی پوچھ تاچھ کرنی چاہیے جس کے پاس اچانک بہت ساری نقدی آئی ہو اور وہ بدلہ لینا چاہتا ہے۔ اسرائیل کی رڑنیتی اب سبھی کو پتہ ہونی چاہیے۔ ان کے ساتھ کوئی سمپرک، کوئی بات چیت، کوئی آتھتیہ، کوئی ویوسائے نہیں کرنا چاہیے اور ان سے کچھ بھی سویکار نہیں کرنا چاہیے۔
بالکل، بہت صحیح بات کہی ہے۔ اور بہرحال اربعین مارچ جو ملین مارچ ہے وہ آج جو ہے وہ دشمنوں کے لیے ایک چنتا کا وشے بنتا جا رہا ہے۔ دوستو، اس آشا کے ساتھ کہ ابھی تک کا ہمارا جو کارکرم ہے آپ کو پسند آیا ہوگا، اب ہم اپنے کارکرم کے اس بھاگ میں جا رہے ہیں جہاں پر ہم اپنے کسی ایک پریے شروتا کے وچاروں کو سنتے ہیں۔ تو دیدی کے پاس چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون ہے اور کس کا وچار ہے۔
یہ ہیں ہمارے بہت ہی پرانے اور اچھے شروتا مکیش کمار۔ تو چلتے ہیں، ان کے وچار سنتے ہیں۔
میں مکیش کمار ٹیلرز بول رہا ہوں، سیور مدھیہ پردیش انڈیا سے۔ میں ریڈیو تہران کے کارکرم کافی پسند کرتا ہوں، سبھی کارکرم مجھے بہت پسند ہیں۔ آپ کے سماچاروں کی کوریج، آج کا اتہاس، دنیا میں کیا ہوا آج کے دن، مجھے کافی پسند ہے۔ کافی گاگر میں ساگر آپ کے پروگرام ہے، راجنیتک چرچا، سبھی کارکرم کافی پسند ہے آپ کے۔ کافی سکشا پرت آپ کے کارکرم ہوتے ہیں، میں کافی پسند کرتا ہوں آپ کے پروگرام اور نیمت روپ سے سنتا ہوں۔ آپ کا ای میل ایڈریس مجھے بھیج دیجئے مجھے آپ کا ای میل ایڈریس جو کہ مل نہیں رہا, وہ انویلڈ بتا رہا ہے, ٹھیک سے کنفرم کرا دیجئے.
تو شروتاؤں آپ کو مجھے لگتا ہے کہ دیدی مکیش کمار صاحب نے کافی اچھی اچھی باتیں کی ہیں
جی,
اور جو ہمارے لیے بھی جو ہے
شکایتیں بھی کی ہیں,
شکایتیں وہی میں کہنے جا رہا تھا کہ جو شکایتیں انہوں نے کی ہیں وہ اس کے اوپر ہم وچار کریں گے مکیش جی, اور اسی طرح آپ ہمارا ساتھ دیتے رہیے. اور دوسرے ایک بات ہم اپنے سبھی سننے والوں سے ایک اپیل کرنا چاہیں گے جو اس وقت ہمیں سن رہے ہیں, ان سے یہ اپیل ہے کہ آپ کوشش کیجئے کہ ہماری سائٹ جو ہے parstoday.com/hi اس کے اوپر ضرور آئیے, وزٹ کیجئے, ان خبروں کو پڑھیے. آپ کو اس سائٹ میں کوئی بھی کمی لگتی ہو, کوئی بھی ایسی باتیں جو ہم اس میں اور اچھا کر سکتے ہوں, اس کے لیے ضرور ہم کو جو ہے آپ کمنٹس کیجئے, ہمیں بتائیے. اور دیدی ابھی ہماری جو ہم بات کر رہے ہیں آپ سے ان کو جلدی برداشت نہیں ہوتا, تو دیکھتے ہیں وہ کیا کہنا چاہ رہی ہیں دیدی.
جی ویسے ہمارے پاس ابھی سمے ہے لیکن ہم کامنٹ شامل کر لیں.
بالکل.
تو میکرا کو اب اپنے کیے پر ہو رہا ہے پچھتاوا, اس پر جوادی لکھتے ہیں, فرانسیسی لوگ بہت سوتنتر لوگ ہیں, میکرا نے انیہ سرکاروں کے ساتھ کام کر کے انہیں دھوکہ دیا جو ان کے ساتھ لوک پریہ نہیں ہیں, یہی کارن ہے کہ فرانس میں جیوت رہنے کے لیے آرتھک روپ سے کٹھن ہو رہا ہے.
بالکل صحیح بات کہی ہے. اس وقت جو فرانس کی استھتی ہے, دیکھیے یہ جتنے بھی دیش ہیں جوادی جی, وہ سارے دیش جو ہے اس وقت اس لیے پریشان ہیں اور آرتھک سنکٹ سے جوجھ رہے ہیں کیونکہ یہ دیش لگاتار پوری دنیا میں اور خاص کر پشچمی ایشیا میں یدھ کی آگ کو بھڑکا رہے ہیں. اگر یدھ نہیں ہوگا, شانتی ہوگی, تو یہ کہیں بھی اس طرح کی کوئی سمسیا یا سنکٹ ہمیں دیکھنے کو نہیں ملے گا. تو دیدی مجھے لگتا ہے کہ ہمارا سمے اب سماپت ہو چکا ہے. تو دوستو اگلے کاریکرم تک کے لیے اپنے بھیا رویش اور دیدی مریم مہردادی کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
شروتاؤ یہ پرسارن آپ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا سے سن رہے تھے. اسی کے ساتھ ہی یہ سبھا یہیں پر سمپن ہوتی ہے. اب ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ.